प्रकाशवाक्य के उसका तीसरा अध्याय, ये लौदीकी के कलीसिया है, 14 पद से लेकर के 22 पद तक। और जो आज हम देखना चाह रहे हैं लौदीकी कलीसिया, जो 7वीं कलीसिया है। सो जैसे मैंने बताया था कि प्रकाशवाक्य का अर्थ जो है वो खोलना है पर्त बाय पर्त, और किस प्रकार से जो चीजें ढपी हुई हैं परमेश्वर प्रकाशवाक्य पुस्तक में वो एक एक करके खोल रहा है। इन 7 कलीसियाओं में परमेश्वर ने इन सारे कालों को बांटा हुआ है। पिछली बार जब हम देख रहे थे, हमने 1500 से लेकर 1750 साल तक के बारे में देखा था किस रीति से कौन सा वो पीरियड है। एक और परमेश्वर का वचन हमसे कुछ कह रहा है जो फिलदेल्फिया कलीसिया है, लेकिन उसके बाद दूसरी कलीसिया जो लौदीकी कलीसिया है वो 1750 से आगे कर रहा है। जैसे विद्वानों ने इस बात को विभाजित किया है उसके अनुसार हम मैं बता रहा हूँ, और इसमें भी कई सारे विद्वानों के अलग अलग विचार हैं, परंतु अधिकतर बाइबल के जो विद्वान हैं उन्होंने इसको पूरी रीति से विभाजित करके उसको देखा है। जब हम पिछली बार देख रहे थे फिलदेल्फिया कलीसिया एक ऐसी कलीसिया थी जिसने सचमुच में प्रभु के वचन को थामा है, लेकिन लौदीकी कलीसिया बिल्कुल अलग कलीसिया है। अर्थात उस समय जब हम पिछली बार देख रहे थे तो हमने देखा था उस काल में किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को स्थापित करके बढ़ाया है, और वही पीरियड था जिस पीरियड में उसने बहुत सारे ऐसे सेवकों को तैयार करके खड़ा किया। हमने मार्टिन लूथर के बारे में देखा था, हमने विलियम कैरी के बारे में देखा था, तो बहुत सारे ऐसे सेवक हैं जिन्होंने उस समय विशेष रीति से सुसमाचार को फैलाने में काम किया है, और उन्होंने बहुत सारे रिसर्च की, बहुत सारा सब कुछ किया। और उसी पीरियड में बाइबल, हिंदी बाइबल भी हमारे पास आई है, ये अनुवाद नहीं, लेकिन जो बाइबल सोसाइटी का पहला अनुवाद है वो उस समय का अनुवाद है जो लगभग 230 साल के पहले के आसपास का है। सो वो समय एक ऐसा समय था जो कलीसिया बहुत ही मजबूती के साथ सुसमाचार के लिए आगे बढ़ रही थी। फिलदेल्फिया कलीसिया, इससे पहले हमने देखा था परसिक्यूशन हैं लोगों सामने हैं, कैसे कैसे लोग सताए गए हैं, कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवनों को बलिदान किया है, और वो यद्यपि सतावनी उस समय भी थी, लेकिन अब धीरे धीरे जब हम लौदीकी कलीसिया में आ रहे हैं तो एक इस तरह से निकल के जा रहा है, एक शाखा के दो तने निकल के जा रहे हैं। एक और जो है फिलदेल्फिया कलीसिया है जो सुसमाचार को लेकर के, सुसमाचार प्रचार को लेकर के आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ लौदीकी कलीसिया है जो एक नामधारी कलीसिया है, नामधारी कलीसिया दिखाई दे रही है। और यही समय था जिसमें बहुत सारी नामधारी कलीसियाओं का धीरे धीरे जन्म हुआ है, और जिन्होंने ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने सुसमाचार का परित्याग किया है, सुसमाचार को अस्वीकार किया है। ऐसे उस समय ऐसे कुछ ऐसे लोग खड़े हो गए थे जिन्होंने बाइबल तक का तिरस्कार किया है, बाइबल तक को नकारा है। सो लेकिन इस तरह से बढ़, तो जब हम लौदीकी कलीसिया में आते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि दो चीज चल रही है, एक ओर परमेश्वर अपने सुसमाचार के कार्यों कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर ऐसी भी कलीसिया है जो दिखती तो कलीसिया है तो लोग चर्च है सब कुछ है लेकिन उसमें सुसमाचार का कार्य नहीं है, वो लोग सोचते कुछ और हैं लेकिन है कुछ, और उसी को देखते हैं। तो ये बहुत दुखी था, और ये पीरियड वो पीरियड है जिस पीरियड में हम हो गए आगे चल के चलते देखते देख रहे हैं। तो जब हम 7 कलीसियाओं पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने 5 कलीसियाओं को, 5 कलीसियाओं के बारे में परमेश्वर ने सराहना दी है, लेकिन 2 कलीसियाओं को परमेश्वर ने सराहना नहीं दी। सीफीसी कलीसिया में यद्यपि वो परमेश्वर के वचन को, सिद्धांतों को दृढ़ और मजबूती से पालन कर रहे थे साथ है, लेकिन फिर भी उनके लिए परमेश्वर ने कहा, उन्होंने पहले से चर्चा सराहना है, सराहना के साथ साथ परमेश्वर उनके बारे में कुछ दुख की बात भी कह रहा है कि उन्होंने पहले जैसा प्रेम खो दिया। जब कलीसिया इतिहास में हम आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जूटने के बाद कलीसिया की स्थापना हुई, सबसे पहले कलीसिया प्रेरित काम में हम पाते हैं यरूशलम में, और अब उसके बाद से सुसमाचार फैला गया और कलीसिया बढ़ती गई। लेकिन पहले 30 साल जो थे उस समय सुसमाचार बहुत तेजी से बढ़ा है और कई कलीसियाओं की स्थापना हुई है, और हम जब परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं प्रेरित काम के उसके 18 अध्याय, 19 अध्याय, 20 अध्याय, इन सारे अध्याय में 16 अध्याय से शुरू हो जाता है, इन विभिन्न कलीसियाओं की स्थापना को हम देखते हैं। जब इफिसी में कलीसिया स्थापना हुई, कुरिन्थियों में स्थापना हुई, फिलिपी में स्थापना हुई, लेकिन उस समय कुछ ऐसे लोग थे जो दूसरे वचन को सुन रहे थे और दूसरे स्थानों में चले गए। पौलुस नहीं गया वहां पर, पतरस नहीं गया, लेकिन लोग विश्वास किया और जाके जब अपने स्थान पे गए तो उन्होंने वहां पर कलीसिया की स्थापना की। हमने इस बात को भी देखा था। तो इफिसी कलीसिया में कई दुख की बात थी, बढ़ रही है, सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर उनके लिए कुछ ऐसे कह रहा है। दूसरी कलीसिया पर्गमन की कलीसिया है। ये कलीसिया, इसने कलीसिया ने विश्वास का तिरस्कार नहीं किया, तिरस्कार नहीं, विश्वास में मजबूत है, विश्वास कर रहे थे, लेकिन इनके जीवन में कमी ये थी कि फिर भी ये पाप भी को साथ साथ लेके चल रहे थे, पाप को अलग नहीं कर पा रहे थे। ये कलीसियाएं बहुत सारी थी, पिछली बार हम देख चुके हैं थुआतीरा की कलीसिया, इन्होंने पूरी तरह समझौता किया था और इनके जीवन में पूरी तरह पाप क्रियाशीलता। सर्दिस की कलीसिया, सर्दिस की कलीसिया ये भी कलीसिया इसी प्रकार की थी, जो कलीसिया थी पर कोई आत्मिक जीवन इनमें नहीं था, परंतु कुछ लोग थे जो विश्वास में उस कलीसिया में पाए जाते थे। पर लौदिकिया की कलीसिया की स्थिति बिल्कुल अलग है, और मैं बार बार इस बात को बताता चला आया हूँ कि जब सातों कलीसिया को जब लिखा गया तो पहला सेंटेंस नहीं था उस कलीसिया के दूत को लिख, फलानी कलीसिया के दूत को लिख, कलीसिया का नाम है और कलीसिया के दूत को। तो दूत जो शब्द है मैसेंजर है, या वहाँ का सेवक है या पास्टर है, उनको लिख और उनको दे रहा। और हमने इस बात को भी देखा था किस प्रकार से परमेश्वर का संदेश पुत्र तक पहुँचाया गया पवित्र आत्मा की सहायता द्वारा, पुत्र के द्वारा स्वर्गदूत तक पहुंचाया गया और स्वर्गदूत के द्वारा यौना तक पहुंचाया गया, यौना जो पत्मोस टापू में बंदी गृह में है वहां पर पहुंचाया गया, और तब यौना इन सारी बातों को लिख रहा है। पर सबसे बढ़ करके परमेश्वर का हाथ उसमें है। सो इस बात को हमने भी इन बातों पर विचार किया था। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो मैंने बताया कि किस तरीके से प्रेरित काम उसके 19 अध्याय उसके 10 पद में जब इफिसी कलीसिया की स्थापना हुई थी, उसके बाद सुसमाचार विरोध के बाद भी सुसमाचार फैलता गया। लेकिन लौदिकिया की कलीसिया की थोड़ा सा पृष्ठभूमि को मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। ये लौदिकिया जो नगर था वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले लगभग 200-250 साल पहले इस नगर की स्थापना हुई थी, और इसको एक शासक था जो एंतिकुस जिसका नाम था द्वितीय एंतिकुस, उसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसने लौदिकिया अपनी पत्नी के नाम पर ये नगर का नाम रखा था, उसकी पत्नी का नाम लौदिकिया था, उसके नाम पर उसने नगर का नाम रखा था। लेकिन कुछ समय बाद ये नगर की स्थापना हुई, नगर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में पति पत्नी में आपस में कुछ मतभेद हुआ और कि पत्नी अपने पति से अलग हो गई। लेकिन छोटा सा नगर था पर ये बहुत धनवान था उस समय के हिसाब से। वहां पर सबसे बड़ा बैंक था, जहां पर जैसे आज बैंक जानते हैं आप, सबसे बड़ा बैंक था जहां पर लोग लेना देना करते थे, सब कुछ एक मुख्य केंद्र के रूप में था। उसमें कई सारे मंदिर से भी घिरा हुआ था। उस समय वहाँ का मेडिकल कॉलेज प्रसिद्ध कॉलेज था और वहाँ पर ऊन का बहुत अधिक व्यापार किया जाता था। तो जब हम किसी भी कलीसिया के किसी स्थान के बारे में पढ़ते हैं और उनकी पृष्ठभूमि में जाते हैं, तो जैसे मैंने बार बार कहा सब कुछ बाइबल में नहीं, बाइबल में लिखा है, यदि सारी बातें लिखी जाती तो पुस्तकें नहीं समाई जाती। लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को खड़ा किया, विद्वानों को खड़ा किया, उन्होंने खोज की है और किस रीति से उन्होंने इन सारी बातों को लिखा है। तो कई सारी चीजें जो पहले से लिखी चली आ रही हैं और उसको कंटिन्यूएशन में दूसरे लोग उसको लेकर आगे बढ़ाते चले आए। तो ऐसी कलीसिया थी जो कलीसिया बहुत अधिक धनवान थी। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं इस कलीसिया के मैं देखते हुए, तो संदेश देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को वचन दिया है और यूहन्ना लिख रहा है। तो संदेश देने वाले का संदेश क्या, उसके हर कलीसिया में हम यीशु के गुणों को देख रहे हैं, यीशु के गुणों को देख रहे हैं, उसके चरित्र को देख रहे हैं, कुछ बातों को देख रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है 14 पद में, लौदिकिया के कलीसिया के दूत को लिख, जो आमीन विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण, वो ये कहता है। कौन लिख रहा है, कौन लिखवा रहा है, उसके बारे में तीन बातें लिखी हैं। पहली बात, वो आमीन है, पहली बात उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो शब्द आया है वो आमीन है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, प्रभु यीशु मसीह दूसरी बात विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है। तीसरी बात, परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, अर्थात वो सृष्टि का मूल है, अपने उसी के द्वारा सृष्टि। सो तीन बातें हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देख रहे हैं। तो इससे पहले कलीसिया के बारे में कुछ कहे या कलीसिया को कुछ संदेश दे, वो अपने कौन उसको लिख रहा है, ताकि लोग उसके अधिकार को समझ सकें। जब हमारे पास कोई पत्र आता है, जैसे ऑफिस में कोई बहुत सारे पत्र आते हैं, तो पहले हम देखते हैं कि किसने लिखा है हमें। कई गवर्नमेंट के लेटर आते हैं, कई सारे, तो हम देखते हैं अच्छा क्या है उनके पास पद, उनका क्या है, तब हम उसको उस तरह से लेते हैं। तो गंभीरता उसमें पाई जाती है, कौन लिख रहा है, कौन भेज रहा है, ये गंभीरता में। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी पत्र कौन लिख रहा है, यूहन्ना क्लर्क का काम कर रहा है, लेकिन असली लिखवाने वाला मसीह है। वो यीशु मसीह के लिए लिखा है, पहली बात, जो आमीन है। प्रभु यीशु मसीह कई सारे टाइटल, मैंने बताया था कि प्रकाश वाक्य में करीब 32 टाइटल प्रभु यीशु मसीह के हैं, और पहले अध्याय में हमने करीब 9 टाइटल प्रभु यीशु मसीह के देखे थे और अब हम देखते हैं कि किस रीति से कई तरह जुड़ते चले जा रहे हैं। आमीन, ये एक विशेष उपनाम है। हम आमीन को बहुत बार बार इस्तेमाल करते हैं, आमीन को बार बार, लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य छुपा है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। ये एक इब्रानी से लिया गया शब्द है, इब्रानी भाषा से लिया गया पद है। लेकिन इसके लिए बड़ी बात यह है कि परमेश्वर जो कुछ भी वचन में कह रहा है उसके साथ आमीन है, वो पूर्ण होना है, वो उसको ऐसा ही होना है। यह है सदैव परमेश्वर के वचन की स्थिरता व्यक्त करता है। ये आमीन शब्द परमेश्वर के वचन की स्थिरता को हमेशा प्रकट करता है। ये एक प्रकार का दृढ़ वचन, अभिपुष्टि एवं गारंटी है। आमीन के द्वारा एक परमेश्वर की गारंटी है। और इसीलिए पौलुस दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय उसके 20 पद में, दूसरा कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय उसके 20 पद में कहता है कि जितने भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के द्वारा की गई हैं वो सदैव आमीन के साथ है। अर्थात परमेश्वर जो अपनी प्रतिज्ञाओं को करने वाला परमेश्वर है वो सदैव उसकी वचन पूरे होंगे। और इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। हम बार बार वचन की बात करते हैं और ये सच है। और जब वो कह रहा है कि उसके साथ आमीन है तो इसका मतलब जो कुछ वो कह रहा है वो सत्य कह रहा है, क्योंकि उसके बाद आगे चल के उसका उसी के साथ दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है कि वो विश्वास योग्य है और सच्चा गवाह है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो अपने कथन में पूर्ण है, वो अपने कथन में सच्चा है। परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन पूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने 3 तरह से बातें की। मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इन 3 तरह के संबोधन उसके हम देखते हैं जो हम सुषमाचार में पढ़ते हैं। कई जगह उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें ये करना है या तुम्हें ऐसा। फिर उसने कहा अपने शिष्य का मैं तुमसे सच कह रहा हूं, अर्थात उस पर और ध्यान देना है। लेकिन फिर उसने कहा मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, इसका मतलब हमें उस पर और ध्यान देना है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी ना नहीं है। और जब वो कह रहा है मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं तो मुझे और आपको और गंभीरता से उन वचनों को लेना है, सारे वचनों को गंभीरता से हमें स्वीकार करना है। परंतु जब वो कह रहा है सो इसीलिए यहां पर वो कहता है परमेश्वर विश्वास योग्य, विश्वास योग्य जो उसने कहा है वो हाँ और आमीन के साथ है। वो मेरे और आपके समान नहीं है जो अपनी बात को कहे और मुकर जाए, ऐसा नहीं। वो परमेश्वर है जो उसने कहा, अगर उसने मुझे और आपको अपनी संतान बना लिया तो हमेशा के लिए उसने बना लिया। उसने कहा जो कोई मेरे पर विश्वास करेगा वो जीवन पाएगा, तो जीवन मिल गया। अगर विश्वास क्या है, हमें उसका जीवन मिल गया, वो पूर्ण भरोसेमंद है, हम उस पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। कहता है कि वो स्वयं लोगों के प्रति अपनी कलीसिया के निमित्त ईमानदार है, अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में, अपने गुण में वो अपवर्तनशील है, वो बदलता नहीं है, उस पर निर्भर रहा जा सकता है इस विश्वास योग्यता के साथ, क्योंकि वो सच्चा है। और इसीलिए जैसे मैंने कहा योना 16:23 में उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ये कथन सत्यता के को प्रकट करने, क्योंकि उसने कहा है मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं, वो सत्य है, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। संसार में मैं, जब तक आप अगर किसी के कहें ठीक है प्रभु यीशु मसीह भी वो भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन जब आप कह देंगे नहीं यीशु ही एक मार्ग है, यीशु ही सत्य है, तब वहां पर गड़बड़ हो जाए, तब लोग उसको, बहुत सारे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। और लोग कहते हैं नहीं आप ये कहिए ये भी है, ये भी, ये भी है, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही हूं और कोई नहीं है। सो उसके सच्चाई को हमें देखना है। दूसरी चीज वो कहता है, पहली बात वो कहता है वो आमीन है, अर्थात उसकी बातें जो हाँ की हाँ है, पूरी रीति से कथन पूर्ण है, स्पष्ट है, सही है, और पूरी अपनी बातों करता है, विश्वास योग्य, उसके हम उसके पर निर्भर हो सकते हैं, निर्भर किया जाता है, वो अपनी बातों से बदलता नहीं है। सृष्टि का मूल है, तीसरी बात तो सृष्टि का मूल है, इस संसार की सृष्टि से पहले प्रभु यीशु मसीह थे, वो विराजमान था, उसकी सार्वभौमिकता को वही प्रकट करता है, प्रभु यीशु मसीह की सार्वभौमिकता को प्रकट करता है। पौलुस कुलुसियों में पहला अध्याय उसके 15 अध्याय में 18 पद में उस बात को स्पष्ट रूप से कहता है, यहां तक कि प्रकाश वाक्य भी 21:6 में इसी स्पष्टीकरण को देता है कि मसीह जिसके द्वारा सब कुछ सृष्टि हुई है। अब उसने कहा सृष्टि में पैलौटा, सृष्टि में पैलौटे का मतलब ये नहीं कि उसकी सृष्टि की, कई लोग जो जहोवा विटनेस वाले हैं और वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह सृष्टि में पैलौटा है, अर्थात पर उसकी सृष्टि नहीं, पैलोटे का शब्द है कि क्योंकि वो मनुष्य बनकर आया, आदम से पहले वो था, इसलिए कि आदम तो मनुष्य बनकर बाद में आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे पहले था और इसलिए उसको पैलोटे का नाम दिया गया है। कई लोग केवल प्रभु यीशु मसीह को, यीशु मसीह, यीशु, यीशु को लेके बाकी पिता पवित्र आत्मा को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, त्रिएक परमेश्वर में वो पूर्ण स्थान रखता है। अतः वो लौदीके कलीसिया को इस बातों को स्पष्ट करना चाह रहा है कि जो तुम्हें लिख रहा है वो कौन है, उसके अधिकार को समझो, उसकी प्रभु सत्ता को समझो, उसकी सार्वभौमिकता को समझो, उसके सत्यता को समझो, उसको समझो जो तुमसे कह रहा है, और उसके प्रति गंभीर हो जाओ। जब परमेश्वर को गंभीरता से लेते हैं तो परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हैं। जब परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हैं तो हम परमेश्वर को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर ने अपने आप को वचन में होकर प्रकट किया है, वचन के द्वारा प्रकट किया है, सो इसलिए वो अपने बारे में कह रहा है। तब वो आगे चल करके कहता है 15 पद में, अब वो इस कलीसिया के बारे में कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं तेरे कार्य को जानता हूं। वो सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है, ना केवल कलीसिया की सराहना कर रहा है, लेकिन इस सराहना में, इस शब्दों में क्या कुछ छुपाया हुआ है। वो कह रहा है सचमुच आ जाए लौदीके की कलीसिया की उसने सराहना नहीं की है, मैं जान रहा हूं तुम जो कुछ कर, क्यों, क्या जानना चाह, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है तुम सोचते हो कि परमेश्वर कुछ नहीं मालूम, मुझे सब कुछ मालूम। परमेश्वर मेरे और आपके बारे में सब कुछ जानता है। मैंने तो और आपने पास्ट को, अतीत को देखा, वर्तमान को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे भविष्य को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है। और परमेश्वर हमारे लोगों के साथ, अपने लोगों के सामने है। यशायाह भी पढ़ा 55 अध्याय, और यशायाह 55 अध्याय में कई सारी चीज जो इस पद में हम पढ़ रहे हैं आगे चल के देखेंगे उसी के साथ जुड़ी हुई है। और क्योंकि परमेश्वर ऐसा हमारा परमेश्वर है, वो सब कुछ तो कह रहा है मैं तेरे कार्य को जानता हूँ, तू क्या है, ना तो ठंडा है ना तो गर्म है। ये लोग कौन लोग थे? ये लोग कलीसिया तो स्थापित हो गई थी, लेकिन ये लोग पूरी रीति से नामधारी थे। और परमेश्वर कहता है ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू गुनगुना है, और इसलिए तुझे मुंह से उगलने पर हूं। तेरे जीवन में कुछ नहीं दिखाई देता, तू सोचता है क्यों, कारण क्या था? ये लोग एक नामधारी रीति से यीशु मसीह की आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ और भी कर रहे हैं साथ साथ। इनके जीवन में भी सबसे अधिक धन का महत्व है, इनके जीवन में सबसे अधिक संसार की बातों का महत्व है, सारी चीज। क्योंकि जैसे मैंने कहा वो बहुत ही अधिक धनवान थे, उनके पास इतिहास इस बात को बताता है कि 68 AD में बहुत बड़ा भूकंप आया था, और बहुत बड़ा भूकंप आने के बाद ये जो स्थान था पूरी रीति से तहस नहस हो गया था, नाश हो गया था। लेकिन सरकार ने कहा ठीक है तुम्हारा बिजनेस खत्म हो गया है, तुम्हारी फैक्ट्री खत्म हो गई है, तुम्हारे घर गिर गए, हम बनाएंगे। उन्होंने सरकार को मना कर दिया कि हमें आप तुमसे पैसा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास अपने आप में इतना था, उन्होंने सब कुछ को अपने आप लगा करके उस नगर को खड़ा कर दिया। और इसलिए इनके अंदर अपने धन का, अपने बल का, अपनी शक्ति का बहुत अधिक घमंड था। इन्होंने सचमुच में प्रभु को उस तरह से नहीं जाना था। प्रभु प्रभु करते थे लेकिन प्रभु को नहीं जानते थे, आराधना करते थे, चर्च में आते थे, लेकिन इनके अंदर वो गर्माहट जो आत्मिक गर्माहट होनी चाहिए थी वो नहीं थी। और इसलिए परमेश्वर ने इनसे इस तरह से बातें की हैं। वो कह रहा है कि ठीक है तुम कहते हो मैं, हम ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, मैं तुम्हारे कार्य को जानता हूँ, चाहे तुम भी, मेरे और आपके कार्यों को परमेश्वर जानने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते, परमेश्वर के सामने सब खुला हुआ है। लेकिन वो क्या कह रहा है, तू गुनगुना है। और मेरे प्रियो, किसी प्रभु के सेवक ने एक गुनगुने व्यक्ति के 7 लक्षण बनाए। कैसे, कौन व्यक्ति गुनगुना है? वो जो आत्मिक रीति से सुस्त है, पहली बात, जो आत्मिक रीति से सुस्त है, आलसी है, वो गुनगुना है। बाइबल पढ़नी है तो पढ़ लेंगे, नहीं पढ़नी नहीं पढ़ेंगे, चर्च जाना है चले जाएंगे, आप आलस में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सुबह उठना है सो ले, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कोई उनके जीवन में कोई वो नहीं है, कोई फुर्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरा, उसका विवेक बहुत कठिनाई से छुआ जा सकता है। विवेक उसका इसलिए ऐसा बन गया है कि उसके विवेक को छूना भी मुश्किल है, शायद उसका विवेक कठोर हो गया है, उसका विवेक, उसको कुछ सुनना समझना नहीं आता है, वो अपनी मर्जी में रहता है। तो ये है उस गुनगुना व्यक्ति है, उसका विवेक, जिसका विवेक जागृत होता है वो सचेत होता है, वो चौंकता है, वो पश्चाताप करता है, वो कायल करता है, उसका विवेक काटता है उसको गलत चीज के लिए। वो कह रहा है उसका विवेक बहुत कठिनाई से छुआ जा सकता है। तीसरी बात, वो प्रभु यीशु मसीह को और उसके पवित्र वचन को गंभीरता से नहीं लेता। एक जो गुनगुना व्यक्ति है वो ना तो प्रभु यीशु मसीह को ना प्रभु यीशु मसीह के वचन को गंभीरता से लेता है। वचन सुनता जरूर है, इस कान से सुना उस कान से नहीं। और आपको मालूम बार 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 प्रभु एक ही चीज को रिपीट करा है, उसका आरंभ करने का तरीका और अंत करने का तरीका एक है। आरंभ करने का तरीका उस कलीसिया के दूत को ले, समाप्त करने का तरीका जो जय पाए। फिर वो कहता है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। और साथ कान होने के बाद भी कई बार हम सुनने नहीं पाते, हमारे पास कान तो है लेकिन जैसे सुनना चाहिए नहीं। सुनने का मतलब क्या है? रिस्पॉन्स करना, हमारा प्रतिउत्तर नहीं। मैं अक्सर बोलता हूँ, आप बैठे हुए अपने घर में, आपने अपनी बेटी से बच्चे से किसी कहा कि एक गिलास पानी ला के दे दो, उसने कहा अच्छा मैं ला रही हूँ। थोड़ी देर बाद आप काम में लगे, फिर आपने कहा कि क्या नाम से आप एक गिलास पानी ला दो, मैं थोड़ी देर बाद, उसने फिर कहा कि आज ला रहे हो, फिर अपने काम में लग गई, बेटी है मान लीजिए बच्चा है लग गए। थोड़ी देर बाद आप कहा क्या तुमने सुना है? नहीं सुना। हाँ सुना है, तो पानी ला के क्यों नहीं दिया? मतलब क्या मतलब? सुनने का मतलब रिस्पॉन्स क्या है, प्रतिउत्तर क्या है। अगर सुना है तो उसको क्रियाशील होना है। और कितनी बार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन क्रियाशील नहीं होते, रिस्पॉन्स नहीं करते उसका, कि हमें कैसे कदम बढ़ाना चाहिए वो नहीं करते। और इसलिए बार बार परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है। तो तीसरी बात उसके लिए, वो ये प्रभु यीशु मसीह को और उसके पवित्र वचन को गंभीरता से लेता। चौथी बात, वो पाप और खोए हुए संसार को की गंभीरता को नहीं समझता। वो पाप को और संसार में जो खोए हुए लोग हैं उसकी गंभीरता को नहीं समझता। ये कलीसिया ऐसी कलीसिया थी। उसके बाद पांचवी बात, वो मसीह की सहभागिता को प्राथमिकता नहीं देता। मसीह की सहभागिता को, विश्वासी की सहभागिता को प्राथमिकता नहीं देता। उसके लिए विश्वासी जय मसीह कर लिया संडे को काफी है, बाकी हमें मतलब नहीं। बार बार यहाँ पर बोलते हैं, आप लोगों को उत्साहित करते हैं कि आप एक दूसरे के हाल चाल पूछिए, किसी की विजिट करिए, किसी से मिलिए, है ना, फालतू बातचीत करने के लिए। अगर आप किसी भी विश्वासी से मिल करके दो मिनट प्रार्थना भी एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, आप एक दूसरे के लिए आशीष का कारण है। कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं, लेकिन हम इतने अधिक व्यस्त हैं हम नहीं सोचते। तो ये चीज है, वो मसीह की सहभागिता को प्राथमिकता नहीं देता। बाइबल स्टडी है, ठीक, वचन का सीखने का समय है, ठीक है, अरे कोई बात नहीं, हमारा ये काम है, वो काम है, ये काम हमारे सामने आते हैं हम उसको। वो पवित्र शास्त्र को मार्गदर्शक नहीं समझता। वो नहीं समझता कि हमारा मार्ग को दिखाने वाला पवित्र शास्त्र है। ये छठी बात है उस व्यक्ति के बारे में जो गुनगुना है। पवित्र शास्त्र के द्वारा अगुवाई नहीं प्राप्त करना मांगता। अगर अगुवाई मांगता है तो गलत रीति से पवित्र शास्त्र को अपनी इच्छा के अनुसार। किसी ने कहा, एक व्यक्ति ने कहा ठीक है मैं, मुझे करना है, मैं बाइबल से प्रभु की अगुवाई को ढूंढूंगा। और बाइबल से अगुवाई को ढूंढने के लिए वो बाइबल पढ़ना, उसने बाइबल खोली एकदम से कि प्रभु तुम मुझसे बात कर और मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। तो उस पन्ना निकाला तो उसमें निकाला तो उसमें लिखा था कि और यहूदा ने जाकर के फांसी लगा दी। यहूदा स्कृति के बारे में उसने अपने आप को फांसी दे दी। अरे ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए, ये तो यहूदी। उसने कहा मैं दूसरे स्थान पर जाऊँ। दूसरा स्थान पलटा तो जैसे पलटा तो वहां लिखा था जा तू भी ऐसे ही कर। तब अपनी है, पर ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। तरीका परमेश्वर के वचन को पाने का, जब हम क्रम रीति से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं क्रमता के साथ सही रीति से समर्पित होकर एक इच्छा में। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ आप क्या पढ़ रहे हैं, आपने क्या पढ़ा आज है मॉर्निंग में। हम लोग यहाँ भाई लोग डिवोशन में आते हैं, मैं अक्सर उन भाई से पूछता हूँ आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों? हमारे अंदर आदत होनी चाहिए। जिस रीति से कई बार हम मॉर्निंग में आदत पड़ जाती है, इतने वो बैड टी है ना, बैड टी बुरी चाय, सुबह सुबह वो बिस्तर की चाय को है ना, वो बुरी चाय है, वो जब तक वो नहीं तो हम बाहर नहीं निकल सकते, हमें वो चाहिए। कितनी बार हम कहते हैं नहीं सुबह उठ के हमें वचन चाहिए। पवित्र शास्त्र को मार्गदर्शन नहीं समझता। सातवीं बात, वो दूसरे के सामने उसके जीवन को कोई साक्षी नहीं है। उस व्यक्ति के जीवन की दूसरे सामने साक्षी नहीं है। गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, नहीं। हमारा जीवन एक साक्षीपूर्ण है। जरूर साक्षी देने में कई बार कठिनाई होती है, कई बार मुश्किल होता है, लेकिन प्रभु संभालता है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे लिए मुश्किल होता है, हमारी साक्षी के द्वारा लोग आते हैं। हमें सीखना है हमारी हमारी बोलने के द्वारा कैसी साक्षी होनी चाहिए, हमारे कार्य के द्वारा कैसी साक्षी होनी चाहिए। कई बार बहुत बार शब्दों से नहीं बोला जाता लेकिन अपने जीवन से दर्शाया जाता है। शांत रह के कई बातें होती हैं और उसके साथ साथ हम अपने जीवन की साक्षी द्वारा दूसरों को देखते हैं। तो ये कह रहा है, ये व्यक्ति अपने आप को स्वयं में पूर्ण समझता है और वो सोचता है कि उसे किसी की कोई आवश्यकता नहीं। ये व्यक्ति गुनगुना है, कहता है मैं पूर्ण, मैं अपने में पूर्ण हूँ। ये व्यक्ति स्वयं घमंड से भरा रहता है और इसे परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है। मुझे परमेश्वर की आवश्यकता क्या था कि लौदे के लिए, क्योंकि लौदे के कलीसिया के पास पैसा था, धन था, सब कुछ था, अच्छा व्यवस्था था, अच्छा उनका बिजनेस था, अच्छा कार्य था, सब कुछ था और बहुत फेमस थे, इसलिए उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। मेरे प्रियो ये सच में, तो ये कह रहा है कि लौदिकी की कलीसिया क्या कह रहा है, तू ये सोचता है, तेरे कार्य को जानता हूं, ना तू ठंडा है ना गर्म है, भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता, इसलिए कि दुन गुना है, ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। ये परमेश्वर का वचन उससे कह रहा है। तब आगे चलकर 17 पद से, तू कहता है कि मैं धनवान हूं और धनी हो गया हूं। मैंने आपने देखा किसी से वो अपने पैसे पर घमन करते थे, मैं धनवान हूं और धनी हो गया हूं, कहता मैं धनवान हूं और मैं धनी हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। पर परमेश्वर क्या कह रहा है उसके, तू यह सोचता है कि तू धनवान है, तू धनी हो गया है, तुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, पर तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुच्छ, दरिद्र, अंधा, नंगा है। ये पांच कठोर वचन है, प्रभु यीशु मसीह के कठोर वचन है। तू इस बात को सोचता है कि तू सब है, लेकिन तू अभागा है, तुच्छ है, दरिद्र है, अंधा है और नंगा है, क्योंकि तेरा जीवन प्रभु के है। एक बिना प्रभु के, बिना परमेश्वर के जीवन इसी प्रकार का है। आज मनुष्य के पास संसारी रीति से, भौतिक रीति से सब कुछ हो सकता है, परंतु जीवन यदि प्रभु के बिना है, सुसमाचार के बिना है, यदि उसने सुसमाचार को सुन करके उस पर विश्वास नहीं किया, सुसमाचार को नहीं जाना, और बिना सुसमाचार के उसका जीवन है, तो वो इसी प्रकार का जीवन है। यदि मनुष्य सब कुछ, इसीलिए प्रभु के वचन में कहा, यदि मनुष्य संसार के सब कुछ को प्राप्त करे और अपने प्राणों के नहीं उठाए तो उसे क्या लाभ। सब कुछ प्राप्त करे, घर हो, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ अच्छी बहुत ऐसे हो, लेकिन अगर प्रभु नहीं है आपके पास। और ये कलीसिया ऐसी थी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नामधारी कलीसिया, आज भी कलीसिया हैं, बहुत सारी नामधारी बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, मैं किसी को नाम लेकर नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हम संसार में रहते हैं, हम जानते हैं, देखते हैं, और उसमें बहुत कुछ दिखाई देता है। लोग इतार को जोड़े सज धज के आते हैं, सब कुछ आते हैं। कुछ कलीसियाओं में तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साल में 3 बार जाते हैं, या जीवन में 3 बार जाते हैं। जीवन में कब जाते हैं, 3 बार जाते हैं, मैं बोलता हूँ अक्सर, जब पैदा हुए तो उनके माता पिता ले गए थे, चलो भैया हैचिंग कर दो, जब बड़े हो गए तब भी चले गए मैचिंग कर दो, है ना, शादी के लिए, फिर जब मर गए डिस्पैच कर दो, तो 3 बात के लिए जाते, हैचिंग, मैचिंग, डिस्पैचिंग, ये 3 जीवन में। नहीं 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 ऐसा नहीं। कुछ लोग होते हैं इस बात के, अच्छा बड़ा दिन आएगा तब जाएंगे, अच्छा गुड फ्राइडे आएगा तब जाएंगे, तब तंबू लगाना पड़ता है, बहुत टेंट लगाने पड़ते हैं। हम कई कलीसियाओं में गए, लेकिन पर ऐसा नहीं। मेरे क्या है, प्रभु का दिन, प्रभु के साथ संगति, प्रभु के साथ सहभागिता, ये हमेशा की है, सीजनल नहीं है। इसीलिए कई बार मसीहों कई तरह से बोला जाता है, कुछ सीजनल ईसाई होते हैं, है ना, नहीं है। हमें सीजनल नहीं होना, हम हमेशा प्रभु के साथ हैं, और वो प्रभु इस बात को जानता है, देखता है। तो ये इस प्रकार के लोग थे, और इसलिए कह रहा है, अगर सुसमाचार सुनने बाद, वो कह रहा है पाप हमारे जीवन को अभागा और नंगा बना देता है। पाप ने, तुम, हमारे पास धन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है तुम ऐसे हो, तुम अपने आप को समझते हो, पर परंतु तुम अभागे हो, तुच्छ हो, दरिद्र हो, अंधे हो। क्या हुआ था अधन की बाटी, अधन की बाटी में पाप आया था, और पाप ने मनुष्य को नंगा कर दिया। लेकिन जब नंगा हो गया, उसने अपने आप के नंगा को देखा, तो उसने अपने प्रयास किए, पत्ते से नंगापन ढालने लगा। लेकिन पत्ते से बनाए हुए वस्त्र कितने दिन तक चल सकते थे, फिर सूखते, फिर सूख के मुरझा के जड़ जाते, फिर नंगापन दिखा। लेकिन परमेश्वर दया का जो धनी है, उसने उस समय में हमारे आदि माता पिता आदम हवा से के साथ भी अपने प्रेम को दर्शाया, और उस समय परमेश्वर ने सबसे पहले बलिदान करके मेमने के वस्त्र से उसको ढका पा, एक प्रतीक था। ये आगे चल करके परमेश्वर मेरे और आपके पाप के नंगेपन को ढकेगा। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम आपने क्या प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने जीवन को पश्चाताप के साथ ग्रहण किया है, या आप भी आज भी आपकी सोच में, आपके विचार में, आपके कार्य में, आपकी इच्छा में पाप है, ये सब कुछ है। कह रहा है हम अपने प्रयास से नंगेपन को ढांपने लगे हैं, शायद अपने धर्म के काम कुछ ऐसे कर रहे हैं, शायद दान है, कोई और रीति विधियों को पूरा करना है, इनके द्वारा हम सोचते हैं, लेकिन सब ये सूखे पत्ते के समान है और मुरझा जाएंगे। और मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को अंदर से देखता है, अंदर देखता है ये सारी चीज। इसलिए मैं तुझे सम्मति दे दूंगा, सम्मति दे रहा है, क्या दे, ना मूल्य, ताकि तू धनी हो जाए। कह रहा है शुद्ध सोना मूल्य, कह रहा प्रभु यीशु मसीह, कह रहा मुझसे, यीशु मसीह से हमें उस सोने को मोल लेना है। कहता है श्वेत वस्त्र पहन ले, ताकि तेरा नंगापन ढाका जाए, आंखों में सुरमा लगा ले, आंखों में। तो वहां पर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने बात को कहा, वहां पर ये सुरमे का व्यापार बहुत अधिक होता था, काजल और सुरमा बहुत अधिक, और परमेश्वर ने हमेशा उस स्थानों को लेकर के, वहां की स्थितियों को लेकर परमेश्वर ने शिक्षाएं दी प्रभु यीशु मसीह। जब उसने यौना उसके 15-16 अध्याय को हम पढ़ते हैं, दाग की बारी को, तो हम देखते हैं कि वहां पर इसराइल में दाग की बारी बहुत होती थी, मुख्य उनका फल कह दीजिए, फसल कह दीजिए माना जाता था, और इसलिए उसने वहां पर उनको लेके कहा, ये लोग विश्वासी नहीं थे, अपने धन पर अपने सारी चीज पर घमंड कर रहे थे, इनका जीवन ऐसा था। प्रभु कह रहा है तुम्हें अगर सच में सच्चे शुद्ध सोना चाहिए, तुम्हें सच्चा धन चाहिए, तुम्हें सच्ची आंखें चाहिए, अगर ये सब कुछ चाहिए तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें वो दृष्टि प्रदान करूंगा जिससे तुम सच्चाई को देख सको, वो दृष्टि प्रदान करूंगा जिससे तुम अपने नंगेपन को पहचान सको, मैं तुम्हें वो चीज दूंगा जिससे तुम्हारा नंगा वस्त्र ढापा जा सके। यशाया उसके 60 अध्याय में भी कहता है कि उसने हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए, धार्मिकता के वस्त्र पहनाए, उससे उसने हमें सुशोभित किया है। सो इसलिए तो पहली बात वो कहता है मेरे पास आओ और शुद्ध सोना मोल लो। ये शुद्ध सोना परमेश्वर का सुसमाचार है। जो सुसमाचार, वो सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के साथ मिला हुआ है। यदि तुम्हें धन चाहिए तो मेरे पास, तुम्हारे पास जो धन है उसे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। यदि तुम्हें धार्मिकता के वस्त्र चाहिए तो तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा। वस्त्र स्वयं बनाए हुए नहीं परंतु धार्मिकता के वस्त्र, यशा 61 अध्याय उसका 10 पद, धार्मिकता के वस्त्र। प्रभु ने अपने धार्मिकता के वस्त्रों से हमें सुशोभित किया है, हमें सजाया है, करा है सुरमा, ताकि तुम ज्योति प्राप्त कर सको। ये है वो इस बात को कहना चाहता है। तब आगे चलकर कहता है ये पहनकर नंगेपन लज्जापन प्रकट ना हो और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लो कि तू देख सके। ये जो तू काजल लगा रहा, सुरमा लगा रहा, इसके साथ व्यवहार कर रहा, ये तुझे तो सच्ची दृष्टि नहीं प्रदान करेगा, लेकिन वो दृष्टि जिससे तू समझ पाएगा कि वास्तविकता में तेरा जीवन है। मेरे प्रिय, जब तक परमेश्वर हमारी आंखों को ना खोले, हम कभी भी सच्चाई को नहीं स्वीकार कर सकते और देख सकते। और इसलिए परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करे कि हमारे जीवन में हो सके। तब आगे चल के क्या कहता है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं उनको डांटता और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। जिससे प्रेम करता हूं, ठीक है, ये लोग वो थे जो प्रभु को नहीं जानते थे, नामदारी थे, लेकिन फिर भी प्रभु उनसे प्रेम करता है। प्रभु कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूं, यदि तुम्हें ताड़ना देता हूं तो तुमसे प्रेम करता हूं। दाऊद कहता है भला हुआ कष्ट मेरे ऊपर आया जिससे मैंने तेरी व्यवस्था का पालन करना सीखा। दुख आने से पहले मैं तो तुझ भटक गया था, परंतु जब दुख आया तो मैं तेरे मार्ग पे आ गया। इस तरह से दाऊद अपने भजन में लिखता है। भजन 119 अगर पढ़ेंगे तो आपको वहां मालूम चलेगा। तो यह है सो परमेश्वर, ये ताड़ना उसकी प्रेम की ताड़ना है, जिससे वो प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। केवल एक ही उसका उद्देश्य है कि ये लोग जो भटक के हुए लोग हैं, जो अपने आप को सचमुच में धर्मी समझ रहे हैं, जो अपने आप को धनवान समझ रहे हैं, जो अपनी उपासना के द्वारा सोचते हैं हम परमेश्वर को प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन इनके जीवन में फिर भी पापों की क्षमा नहीं है, उद्धार की अनुभव नहीं है, सुसमाचार का प्रथान नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। वो सुसमाचार, जिस सुसमाचार के द्वारा हम जीवन पाते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमसे पहले होकर प्रेम किया, हम पापी थे, हमें धन की आज्ञा लग चुकी थी, हम नाश हो रहे थे, वो मेरे और आपके लिए क्रूस पर मारा गया, मनुष्य बनकर आया, उसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। वो कहता है कि मैं प्रेम, जिससे प्रेम करता हूँ तार देता हूँ, इसलिए सरगम और मनो, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। जब प्रकाश वाक्य में आप पढ़ते हैं तो आप क्रमों को देखिए किस रीति से क्रम है, और इन कलीसियाओं में, इन तीनों कलीसियाओं में, इफिसियों उसके दूसरे अध्याय इफिसियों की कलीसिया को लेते हैं, मैं तेरे पास आता हूँ, पहली बात कह रहा मैं तेरे पास आता हूँ। दूसरी बात पिरगमुन को, दूसरा अध्याय 16 पद, पिरगमुन को मैं शीघ्र आ रहा हूं। अब उसके कदम को देखिए, वो प्रभु नजदीक आता चला जा रहा है, तो वो समय बढ़ता चला जा रहा है, प्रभु नजदीक आता चला रहा है, अर्थात उसका द्वितीय आगमन नजदीक है, वो निकट है आना उसका। अब ये नहीं किसी ने कहा कि 2022 में वो आ जाएगा, ऐसा नहीं, कोई तिथि नहीं बता सकता, लेकिन हाँ बाहर के जो लक्षण है हम उससे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। और ये सातों कलीसिया में 6 कलीसियाओं में प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के बारे में संकेत देते हैं। पिरगमुन की कलीसिया, मैं शीघ्र आ रहा हूं, दूसरा अध्याय 16 पद। थुआतीरा की कलीसिया, मैं आने तक, मेरे आने तक दृढ़ता पूर्वक थामे रहे, दूसरा अध्याय 25 पद। सदृश को, मैं चोर के सदृश आऊंगा, तीन अध्याय 3 पद। फिलाडेल्फिया कलीसिया, मैं शीघ्र आने वाला हूं, 3 अध्याय उसका 11 पद। लौदी की कलीसिया, 3 अध्याय 20 पद, मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूं। अब प्रभु के कदम बढ़ते चले जा रहे हैं, वो निकट आता चले जा रहा है, जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है, आप उसको देख रहे हैं, और जैसे जैसे वो नजदीक आता है उसकी परछाई आपको दिखाई देती है, देती स्पष्ट होती चली आती है। पहले शायद दूर है परछाई, लेकिन जितनी नजदीक आती है वो स्पष्ट होती चली आती है, और तब उसके बाद आप शायद संभवतः आप उस आदमी को और उस व्यक्ति को भी पहचान लेते हैं क्योंकि कौन आ रहा है, और अपने आप को तैयार करते हैं उसे मिलने। प्रभु यीशु मसीह भी इसी तरह से, वो आना उसका समय निकट है। अब ये कलीसिया जो कलीसिया जिस कलीसिया में है हम, ये कलीसिया हमें वहां तक ले जाएगी जो प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन रैप्चर का समय है। प्रभु आएगा बादलों पर अपनी कलीसिया को ले जाएगा, जो विश्वासी है, जिन्होंने सच्चे मन से सुसमाचार पर विश्वास किया है, पश्चाताप किया है, मन फिराया है, वो नहीं जो जैसे इस कलीसिया के बारे में बात कर रहे हैं जो रीति विधियों पर निर्भर रहते हैं, अरे मेरे बाप दादा तो ये थे इसलिए ऐसा, नहीं वो नहीं, हम बाप दादा नहीं, हमारे बाप दादा कुछ भी थे, लेकिन हमने व्यक्तिगत रीति कैसे जाना इस रीति से, तब वो कह रहा है। और इसलिए हमें अपने आप को तैयार रखना है कि वो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, कह रहा है मैं द्वार पर खड़ा खटखट, कई तरह से इसके संदेश को दिया जाता है, लेकिन किसके लिए कह रहा है, इस कलीसिया के बारे में कह रहा है। वो कह रहा है तुम लोगों ने मुझे कलीसिया से बाहर कर रखा है, कलीसिया से बाहर कर रखा है, अपने जीवन से बाहर कर रखा है, अपने विश्वास से बाहर कर रखा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस अभी भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अभी भी तुम्हारे को जीवन देना चाहता हूँ, अभी भी मैं चाहता हूँ तुम बच जाओ, ताकि जब मैं दोबारा इस संसार में आऊँ और कलीसिया को ले जाऊँ तो तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह किसी एक कलीसिया को लेने नहीं आएंगे, ये तो हमने सियोन नाम केवल पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी कलीसियाएं हैं, उनके अलग अलग नाम है, लेकिन विश्वव्यापी कलीसिया अर्थात पूरे संसार में जिन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, पश्चाताप करके उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, चाहे वो गांव के विश्वासी हों, चाहे वो शहर के विश्वासी हों, चाहे गरीब हों, चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे अनपढ़ हों, कोई भी हो, परमेश्वर की दृष्टि हर उस व्यक्ति और उन सबको अपने साथ ले जाएगा। और मेरे प्रियो, यहाँ पर हम इस बात को खास देखते हैं कि पहली चीज रैप्चर है, प्रभु यीशु मसीह के तिसलियों के बार बार पौलुस समझाता है, हम उसके साथ हवाओं में उठाए जाएंगे, तो परमेश्वर अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन जिन्होंने उसको तिरस्कार किया उसको छोड़ देगा और वो सतावनी में से होके जाएंगे। अभी सतावनी कम है, सतावनी महासतावनी सारा परमेश्वर का वचन बताता है, ऐसे समय आएगा जहाँ भी और भी भयंकरता उत्पन्न होगी, ये कुछ नहीं है, हमें फिर भी आज़ादी है, हम प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, हमें फिर भी आज़ादी है कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हमें फिर भी आज़ादी है कि हम प्रभु के नाम से मिल सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो एक समय आएगा जो बहुत कठिन समय होगा, पर परमेश्वर वचन है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को उस सतावनी में से नहीं होकर जाने देगा, उससे पहले उसको उठा लेगा और फिर और आगे वो सतावनी का समय पूरा होगा। कह रहा है यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके साथ भीतर आकर के उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो हम अक्सर देखते हैं वो 1948 में एक कलाकार ने उस डिजाइन को बनाया था, द्वार खड़ में कई बार देखते हैं यीशु मसीह दरवाजे पे खटखटा रहा है, उसके 3 साल 4 साल बाद उस किसी एक और कलाकार ने उसको और सुधार करा है, लेकिन उनका संकेत है। परंतु खास तौर से उन लोगों के लिए बात हो रही है, कलीसिया में है पर कलीसिया नहीं है, कलीसिया में है पर कलीसिया नहीं है, कोई भी हो सकता है, विश्व की सारी कलीसियाएं बहुत सारे हम नाम से जानते हैं कह सकते हैं, लेकिन प्रभु जानता है, वो कहता है मैं जानता हूं, प्रभु मेरे और आपके बारे में जानता है, पर परमेश्वर का निमंत्रण है, उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा, अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा, क्या कह रहा है, जैसे मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। जब हम 4 और 5 अध्याय में आते हैं प्रकाश वाक्य, तो 4 और 5 अध्याय में इसी पद का एक्सप्लेनेशन हम उसमें देखते हैं, जहां पुत्र सिंहासन पर बैठा है पिता सिंहासन पर बैठा है, उसको देखते हैं और तब वो वर्णन है, वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखने में आएंगे। लेकिन वो क्या कह रहा है, मैंने भी जय पाई है, प्रभु यीशु मसीह संसार में मनुष्य बनकर आए, लेकिन प्रभु ने उनको विजय दी। मेरे प्रियो, एक विश्वासी एक विजय जीवन जीने वाला, हम अपनी शक्ति में नहीं, अपनी सामर्थ्य में नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर की शक्ति में, परमेश्वर की उपस्थिति में होकर विजय को प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। जिसके सुनने के कान हो सुन ले, आत्मा कलीसिया से कहता है, काश प्रभु मुझे और आपको सुनने वाले कान दें।